संयुक्त राष्ट्र समाचार महबूब खान से 24 मई 2019 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। आम आबादी की सुरक्षा के लिए मंशा और अनुशासन में कमी गंभीर चिंता का विषय। वन्य जीवों की अवैध तस्करी से अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर, भारत भी बना हॉटस्पॉट। शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति से कंपनियों को हो सक्ता है बड़ा फायदा, मगर अब भी खानापूर्ति का चलन। मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकारी जीवों का है अहम योगदान, मगर घट रही है उनकी संख्या। और फसलों की विविधता घटने से लोगों का भोजन भी एक जैसा होता जा रहा है, जो है बड़ी चिंता का कारण। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि आम आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम तो पर्याप्त हैं, मगर उन पर अमल करने की मंशा और अनुशासन में गिरावट आई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 वर्ष पहले आम आबादी की सुरक्षा का मुद्दा अपने एजेंडा में शामिल किया था। इसी मौके पर सुरक्षा परिषद में हुई एक बहस में शिरकत करते हुए महासचिव ने कहा कि जब हम आम आबादी की सुरक्षा की स्थिति की बात करते हैं तो आलोचनात्मक होना वाजिब है, क्योंकि गंभीर रूप से चिंतित होने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने शांति अभियानों में विशेषज्ञ सलाहकारों की तैनाती, मानवीय सहायता एजेंसियों के मजबूत कामकाज को भी खास आश्रय दिया। इन सभी ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में बाल सुरक्षा मजबूत करने और आम नागरिकों को यौन हिंसा के घृणित हमलों से बचाने में सराहनीय काम किया है। अंतोनियो गुटेरेश का कहना था कि संघर्षरत इलाकों में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों पर नजर रखना और उनकी खबर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को देने से भी हजारों बच्चों की मदद की जा सकी है। साथ ही युद्धरत पक्षों के साथ बातचीत करने से हजारों बच्चों के पुनर्वास और सामान्य जीवन जीने में मदद करना संभव हो सका है। उनका यह भी कहना था कि सशस्त्र संघर्ष वाले इलाकों में चिकित्सा सहायता मुहैया कराने वाले कर्मियों की सुरक्षा और अत्यंत गरीबी वाले इलाकों में सुरक्षा मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के अनेक प्रस्तावों की बदौलत भी इन मुद्दों को प्रमुखता मिल सकी है। हालांकि अंतोनियो गुटेरेश का यह भी कहना था कि इस प्रगति के बावजूद सशस्त्र संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करने की घटनाओं की वजह से बहुत से इंसान भारी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग आम आबादी से ही संबंध रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 के दौरान अफगानिस्तान, इराक, माली, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और यमन में 22,800 से भी ज्यादा लोग हताहत हुए। इसके अलावा सीरिया के पश्चिमोत्तर इदलिब इलाके में अस्पतालों, स्कूलों, बाजारों और शिविरों पर अंधाधुंध गोलीबारी और हवाई हमलों में आम लोग हताहत हुए, जिनकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर डर और दहशत का माहौल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि शीर्ष पदों की जिम्मेदारी महिलाओं को देकर कंपनियां अपने प्रदर्शन में 20% तक की बढ़ोतरी ला सकती हैं। लेकिन रिपोर्ट दर्शाती है कि अधिकांश कंपनियों के बोर्ड रूम में लैंगिक समानता के नाम पर अब भी खानापूर्ति ही हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस नई रिपोर्ट में 70 देशों की 13,000 कंपनियों का अध्ययन किया गया है। हर 10 में से 6 कंपनियों ने माना कि लैंगिक विविधता से उनकी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार आया और उनकी सृजनात्मकता, नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रबंधन वाले पदों में लैंगिक विविधता पर नजर रखने वाली कंपनियों में 3/4 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें 5-20% तक फायदा हो रहा है। अधिकतर कंपनियों ने 10-15% की बढ़ोतरी दर्ज की है। रिपोर्ट बताती है कि लाभ में वृद्धि के अलावा बोर्डरूम में 1 से ज्यादा महिला होने से कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही प्रारंभिक स्तर से लेकर वरिष्ठ पदों तक महिला प्रबंधकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद सिर्फ 1/3 ही ऐसी कंपनियां हैं जिनके बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी 30% या उससे ज्यादा है। महिलाओं की हिस्सेदारी कंपनी बोर्ड में 30% या उससे ज्यादा होने को अहम माना गया है, क्योंकि इससे अन्य वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की नियुक्ति में आसानी होती है। रिपोर्ट तैयार करने वाली जय ही चांग ने बताया कि शीर्ष पदों पर जो कुछ भी होता है उसका असर धीरे धीरे निचले स्तरों पर भी होने लगता है। ये कंपनियों के प्रदर्शन से जुड़ा मामला है। श्रम संगठन में निदेशक डेबरा फ्रांस मसीन का कहना है कि ये स्पष्ट है कि श्रम बल में उस तरह के वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या कम है, और जैसे जैसे किसी कंपनी में शीर्ष पर आप जाते हैं महिलाओं के वहां मिलने की संभावना कम होती जाती है। 1991 से 2017 तक 186 देशों से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद UN रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक होने और कंपनी का उत्पादन बढ़ने में सीधा संबंध है। मधुमक्खियों सहित अन्य परागणकारी जीव सदियों से कृषि उत्पादन और जैव विविधता में बहुमूल्य योगदान देते आए हैं और दुनिया में 3/4 से ज़्यादा फसलों का परागण करते हैं, लेकिन उनकी संख्या में लगातार कमी आने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर परागणकारी जीवों की अहम भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। परागण कणों के फूलों के नर हिस्से से मादा हिस्से तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जिससे नए बीजों और फूलों का जन्म होता है और पौधे फलते फूलते हैं। अगर मधुमक्खियां और अन्य परागणकारी जीव जैसी तितलियां, गुंजन पक्षी यानी हमिंगबर्ड, चमगादड़ न हों तो कॉफ़ी, बादाम, टमाटर, गाजर, आलू, कोको, सेब और अन्य फलों के उत्पादन में मुश्किलें पेश आ सकती हैं। अमेरिका और यूरोप से मिले आंकड़ों के विश्लेषण के बाद संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने सचेत किया है कि मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की वजह से परागणकारी जीवों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है और उनकी कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए खो सकती हैं। खाद्य और कृषि संगठन में कृषि अधिकारी अब्राम बिक्सलर का कहना था,
It's really a combination of factors kind of all coming together, all of which are driven by human activity. So,
Abraham Bixler कह रहे थे कि ये कई कारणों के एक साथ आने का नतीजा है। इनमें से सभी मानवीय गतिविधियों की वजह से हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक कारक है, प्राकृतिक वास का खो जाना एक कारण है, जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल एक बड़ी वजह है, लेकिन कई सारी बीमारियां और हानिकारक कीट हैं जो हमारे परागणकारी जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब इन सभी कारणों को इकट्ठा किया जाए तो हाँ, परागणकारी मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन में कृषि अधिकारी अब्राम बिक्सलर के शब्द। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार परागणकारी जीवों में सबसे लोकप्रिय मधुमक्खियां हैं और उनकी 25,000 से 30,000 प्रजातियां हैं। पालतू मधुमक्खियों की तुलना में जंगली मधुमक्खियां ज्यादा बेहतर ढंग से परागण करती हैं, क्योंकि उनके पास अधिक संख्या में रोएं होते हैं, जिससे जब वो पराग कणों की तलाश में जाती हैं तो वो चिपक जाते हैं। मधुमक्खियों और अन्य परागणकारी जीवों के संरक्षण की अपील करते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने और जैव विविधता कायम करने में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों की सुदृढ़ता बढ़ाना टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा का एक अहम घटक है। वन्य जीवों की अवैध तस्करी से दुनिया भर में जीवों की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। जानवरों को पालतू बनाने की प्रवृत्ति और उनके चिकित्सीय गुणों के कारण भारत में भी वन्य जीवों की तस्करी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आसानी से पैसा कमाने के लालच में युवा भी इस काम में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वन्य जीव अभियान की समन्वयक लीसा रोल्स का कहना है कि जानकारी के अभाव, लालच, कम जोखिम और अधिक पैसे कमाने के मौकों की वजह से वन्य जीव अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इस मामले में भारत एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। वन्य जीवों की अवैध तस्करी के कारण विश्व में अनेक प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में ये व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जो दुर्लभ प्रजातियों की बढ़ती मांग से प्रेरित है। इसका कारण जानवरों को पालतू बनाने की प्रवृत्ति है, साथ ही उनका चिकित्सकीय उपयोग भी। इसका मुख्य बाजार चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया है, लेकिन जीवित वन्य जीवों या उनके शरीर के अंगों की तस्करी खाड़ी देशों, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी की जाती है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के जरिए तस्करी भी की जाती है। बाघ और तेंदुओं की खाल, उनकी हड्डियां और शरीर के अन्य अंग, गेंडे के सींग, हाथी दांत, कछुए, समुद्री घोड़े, सांप का विष, नेवले के बाल, सांप की खाल, सी कुकुम्बर, चीरू का ऊन, कस्तूरी मृग की कस्तूरी, भालू का पित्त, औषधीय पौधे, लाल चंदन की लकड़ी और पिंजरे में रखे जाने वाले पक्षी जैसे पैराकीट, मैना और मुनिया की तस्करी हो रही है। अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है कि ये अमूल्य प्रजातियां भारत में मौजूद हैं, लेकिन ऐसी प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। भारत में अब सिर्फ 25 चीरू ही बचे हैं। सबसे अधिक तस्करी पेंगोलिन, समुद्री घोड़ों और कछुओं की जाती है। 2018 में ट्रैफिक इंडिया ने एक अध्ययन जारी किया जिसमें कहा गया था कि 2009 से 2017 तक भारत से कम 5,772 पेंगोलिन को अवैध व्यापार के लिए पकड़ा गया। भारत में वन्य जीव व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए मजबूत कानूनी और नीतिगत संरचना है, लेकिन जल्द कमाई के लालच ने बेरोजगार युवाओं को कुरियर की तरह काम करने के लिए आकर्षित किया है। इसकी वजह से वे अवैध व्यापार में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया भर में फसलों की विविधता घट रही है और लोगों का खाना एक जैसा होता जा रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। ये चेतावनी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जारी की गई है, जिसके जरिए पर्यावरण की उपेक्षा से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। पौधों और जीवों की प्रजातियों, प्राकृतिक वासों और अनुवांशिकी में जैव विविधता होने से पारिस्थितिकी तंत्रों को स्वस्थ बनाए रखने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से जूझने में मदद मिलती है। मानवीय गतिविधियों से कई प्रजातियों पर पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा असर पड़ रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। हाल ही में जारी की गई एक नई रिपोर्ट में जैव विविधता पर मंडराते संकट के प्रति आगाह किया गया था। इस वर्ष जैव विविधता दिवस का विषय हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य है, जिसके जरिए मानवीय जीवन में जैव विविधता की भूमिका और इसकी अहमियत के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिवस पर जारी संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि हम जो पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और सांस लेते समय जो हवा खींचते हैं, उन सब की गुणवत्ता प्राकृतिक दुनिया के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जैव विविधता का होना टिकाऊ विकास एजेंडा के 17 लक्ष्यों को पाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी आवश्यक है। दुनिया की मौजूदा खाद्य प्रणाली खंडित हो रही है। अरबों लोगों को सेहतमंद आहार उपलब्ध नहीं है। खाद्य उत्पादन का करीब एक तिहाई हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जिन तरीकों से हम फसलें उगाते, तैयार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, भोजन करते हैं और उसे बर्बाद करते हैं, वो सब जैव विविधता क्षरण के मुख्य कारण हैं और इससे जलवायु परिवर्तन भी होता है।